الصراع.
أنا بعيد عن خط عمله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته إلى العالمين، أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ مولا ہے، اللہ ولی. قرآن کریم کی پہلی آیت جو آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ میسج اور کئی جگہ پھر قرآن نے اس بات کو دہرایا. غدیر خم کے میدان میں بھی ولایت کا اعلان اللہ کی ولایت سے شروع کیا گیا. جب اللہ ولی، تو ولی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، مولا کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ اس میں سے ایک سورہ نحل کی وہ آیت تھی کہ امر اور نہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں نیکیوں کا حکم دے رہا، یہ ہر مولا کی ذمہ داری. جو بھی مولا ہوگا، جو بھی ولی ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری. وینہا، اور اللہ تمہیں روک رہا ہے عن الفحشاء والمنکر والبغی، کچھ گناہوں سے. اب بات تو اللہ ہی کے حوالے سے آگے بڑھے گی، لیکن جو لفظ میں نے ابھی استعمال کیا، یہ جو جملہ میں نے کہا کہ ہر ولی کی یہ ذمہ داری، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی بعض اوقات ہم اور آپ اپنے خاندان کے، اپنی فیملی کے، اپنی اولاد کے، اپنے لڑکوں کے، اپنی لڑکیوں کے ولی بنتے ہیں. اب انشاءاللہ آخری مجالس میں اس عنوان پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن ابھی تو یہ تصور واضح ہونا چاہیے کہ مولا یا ولی وہ کیا فرائض کو انجام دیتا، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ولی کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کے نیچے، اب جیسے باپ ولی ہے اپنے خاندان کا، میرے والد آپ کے ولی نہیں، آپ کے والد میرے ولی نہیں، لیکن اللہ سب کا ولی. تو جو جہاں کا ولی، اس کی ذمہ داری اپنے نیچے والوں کے حوالے سے یہ ہوتی کہ انہیں نیکیوں کا اور گناہوں کا تذکرہ کر کے ان کے ایمان کو بچائے. یہ بنیادی چیز، ہمیں اپنے دین کو ریلیجس اور اسپریچول راستے پہ رکھتے ہوئے پھر کوئی سوشل کام کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارا ٹریک چینج ہو جائے. ہم سمجھ رہے ہوں کہ دین کا کام ہے اور ہمارا دین ایک سوشل آرگنائزیشن بن جائے. کہ ولی کا پہلا کام گارجین، ولی کے معنی پروٹیکٹر، ولی کے معنی ماسٹر، ولی کے معنی آقا، یہ پہلا کام. اور یہاں پر کل ضمناً ایک بات آئی تھی، گرچہ میں محرم کی ان مجالس میں مسائل فقہ کو یا مسائل شریعت کو بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی بات اور اتنی امپورٹنٹ بات آ جاتی کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. پھر میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا کہ یہ جو آیت سورہ نحل اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب معاویہ نے منبروں سے اور نماز جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کو برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا شروع کیا، اور بعد میں اسی خاندان کے ایک حکمران عمر ابن عبدالعزیز نے، دو سال ان کا ٹائم پیریڈ تھا، اس دو سال میں یہ طریقہ ختم کر کے اس کے بدلے جو مولا علی کو برا بھلا کہنا پارٹ آف دا خطبہ بن گیا تھا، اس کے بدلے میں سورہ نحل کی اسی آیت کی تلاوت کو رائج کیا تھا. اللہ عدل کا حکم دیتا. ابھی ہو از حسین نامی آرگنائزیشن کا جو انٹروڈکشن ہو رہا تھا، اور کتنے اچھے طریقے سے اور کتنا اہم کام آج کی دنیا میں انجام دیا جا رہا، تو اس میں یہ لفظ آیا کہ حسین جسٹس، اللہ عادل. کل یہ بات ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ ہم سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ اسکیل لے کے نہ بیٹھو کہ بس جتنا جس کا حق ہے اتنا ہی دینا، کمی بھی نہیں کریں گے لیکن جتنا ہے واجب اتنا ہی کریں گے. نہیں، اس کے بعد احسان کی منزل آتی، اور احسان کے حوالے سے جو ہماری قوم کا ایک طریقہ کار ہے ہمارے یہاں، لیکن نجاست و طہارت تک، نمازوں اور روزوں کے ٹائمنگ تک، خمس کے پیمنٹ تک، باقی عام زندگی میں جو والدین کا حق ہے اس سے زیادہ دو، جو اولاد کا حق ہے اس سے زیادہ دو، جو بیوی کا حق ہے اس سے زیادہ دو. اب یہ مسئلہ تو آج کل بہت فیمس ہو گیا، آیت اللہ سیستانی سے لے کے آیت اللہ خوئی سے لے کے آیت اللہ محسن حکیم سے لے کے تمام مراجع کے پاس ہے کہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے اپنے گھر والوں پر، جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ خرچہ کرنا. اب لوگ مس گائیڈ نہ ہو جائیں، اس لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، بعد میں تفصیل آئے گی. تو اب ہمارے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں، مگر اپنی عام لائف میں بھی مومن کا جو حق ہے جتنا ہے اس سے زیادہ دو. اب جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ہمارے ہاں جو لوگ خمس پیمنٹ کرتے ہیں، میری مجالس میں انہی لوگوں کا ذکر ہوتا، جو خمس نہیں دیتے ہیں وہ یا تو مجلس میں آئیں گے نہیں، یا اگر آئیں گے تو غم کے بیان کے وقت آئیں گے، اگر کسی وجہ سے شروع میں آنا پڑ گیا تو سنیں گے نہیں. تو جو خمس دیتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں ایک نارمل پریکٹس ہے کہ نہیں، کہ اگر ہمارے یہاں 100 پاؤنڈ پہ خمس ہم نے 20 پاؤنڈ نکالا تو کبھی آدمی 20 کے بدلے میں 22 یا 25 پاؤنڈ دے دیتا احتیاط. 20 واجب ہے، چلو ہم 25 دے دیتے، زیادہ ہی دے دو، امام کے نام پر کم نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ خمس 25% ہے تو یہ حرام اور گناہ. اگر یہ خیال ہے کہ میں 25 پاؤنڈ دے رہا ہوں اس لیے کہ خمس 25 ہے، اس نے شریعت بنائی ہے، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. مغرب کی نماز 3 سے 4 رکعت کوئی نہیں کر سکتا ہے، خمس 20 سے 21% کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں یہ رائج ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں خمس ہے تو 20 پاؤنڈ، احتیاطاً کو زیادہ ہی دے رہا ہوں. یہ ہے احسان، جو ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں، خاص طور پر عبادتوں میں یہ رائج ہے، مگر اسے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیں پھیلانا. اور یہاں رک کر ایک بات جو میں نے کل کہی تھی اسے ایک اور اینگل سے سمجھا دوں، کیونکہ دیکھیے پہلی مجلس سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ افسوس ان پر نہیں ہوتا جو مثلا گمراہ تھے، غلط تھے، باطل پر تھے اور اسی پہ مر گئے. افسوس ان پر ہوتا ہے جو ٹھیک تھے، صحیح تھے، حق پر تھے، بات جانتے تھے، اور پھر کہیں کوئی ایسی وہ ٹیکنیکل مسٹیک کر گئے کہ وہاں سے باطل پہ آ کے گرے. جیسے میں نے کہا تقلید نہ کرنے والے، اب یہ باتیں ہو چکی ہیں آج ریپیٹ نہیں کرنا، وہ پھر بھی تھوڑا سا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تقلید جانتے، تقلید کرتے کرتے آدمی اگر تقلید چھوڑ کے غلط راستے پہ چلا جائے. خمس نہ دینے والے، ٹھیک ہے جو بھی ان کا گناہ ہے یا غلطی، لیکن اگر خمس دینے والا بھی آخر میں وہی بلنڈر کرے کہ اس کو دوبارہ خمس دینا، اس پہ زیادہ افسوس ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری سمپیتھی یا پیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے کہ خمس دے بھی رہے ہیں بیچارے. تو اب اس کو ایک اور اینگل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو معصوم نے شیطان کا طریقہ کار بتایا، اور ہمارا موضوع اسی جانب جا رہا، ایمان کا پروٹیکشن، تو तो ईमान को खतरा तो शैतान से है ना, तो शैतान कहां कहां से अटैक करता है, बात आखिर में वहीं जाएगी। अभी तो पहला स्टेज चल रहा है, तो मासूम ने जो शैतान का तरीका बताया कि पहले मोमिन को नेकी से रोकेगा, इन्नल्लाह यामुर, अल्लाह नेकी का हुक्म दे रहा है, शैतान रोक रहा। मगर इसके बाद इमाम ने यह फरमाया कि अगर वो देखे कि कोई मोमिन नेकी से नहीं रुक रहा तो करने दो इसको नेकी, कोई एक ऐसी गलती इससे करा लो कि नेकी करके भी ये जीरो पे खड़ा हो। अल्लाह है, आदिल है, हमारी मजबूरी देख रहा है, यकीनन अगर हमने जानबूझकर ये गलती नहीं की तो वहां से रहमत और माफी भी मिलेगी। मगर शैतान कई तरीके का, ये नमाज से रोक दो, पढ़ रहा है नमाज तो ऐसी नमाज पढ़वाओ कि नमाज गलत हो जाए, जैसे वुजू गलत तो नमाज गलत, जैसे आज दुनिया के बाज इलाकों में नमाज के तशहुद में एडिशन, या पढ़ रहा ये नमाज अच्छी खासी इसकी नमाज हो रही थी, हुक्म खुदा पूरा कर रहा था और ऐसी कोई गलती करा दी कि सारी नमाज इसकी बातिल हो रही है। नमाज पढ़ रही है ये औरत, जरा सा इसके बाल या इसकी कलाई ये रिस्क ये जाहिर करवा के नमाज गलत कर दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे नमाज गलत है, अगर किसी को मसला मालूम है वो एहतियात कर रही है और फिर उसकी लाइलमी में ये गलती हो जाए तो माफ है, लेकिन जिनको इसकी केयर ही नहीं है, तो अब ये शैतान का तरीका है, खुम से रोको। लेकिन अगर दे ही रहा है कोई मोमिन, शैतान को मुसलसल डिफीट देता हुआ वो खुम्स की पेमेंट पर तैयार हो गया, तो अब कोई ऐसी गलती कराओ कि खुम्स दे भी रहा और कयामत में ये खुम्स न देने वालों के साथ खड़ा हो। अलबत्ता अल्लाह की रहमत रहेगी, इनमें और उनमें फर्क होगा। अब इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल इसलिए दूसरे एंगल से दे रहा हूं कि ये जो आजकल हमारे यहां प्रॉब्लम हो गया है कि खुम्स देने वालों के खुम्स को जाय करवाया जा रहा, मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, नहीं कोई डर और खौफ नहीं है, टाइम मेरे पास जरा कम। एक शरई मसला बहुत पुराना, बहुत पुराना, वो यह है कि अगर कोई आदमी काफिर और वह मुसलमान होता 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, यह मसला फिक्री बता रहा हूं, और वो जब मुसलमान होता तो जितने भी उसके माजी के वाजिबात हो, मुस्तहबात हो, आराम वगैरह है, अब एक एक लफ्ज को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो सब ऑटोमेटिकली माफ हो जाते। और अगर वो मरते दम तक मुसलमान नहीं होता तो कुफर के अलावा इबादतों का भी उसको जवाब देना। अल कुफार युआक़िबून अलल फुरूअ कमा युआक़िबून अलल उसूल, 99% मराजे का फतवा मैंने पढ़ा कि काफिर फुरूअ दीन पर भी सवाल और जवाब होगा और सजा मिलेगी जिस तरह उसूल दीन पर है। वो ये नहीं कहेगा जब अल्लाह को नहीं मानता तो 70 साल की नमाज का हिसाब कैसे दूं, मैं तो मानता ही नहीं था, नहीं, वो भी अल्लाह के बारे में भी जवाब देना है नमाज के लिए। लेकिन अगर वो इस्लाम ले आया 60 साल की एज में, तो अब वो नमाजें उस पर वाजिब हैं, वो उस पर बाकी हैं, ये अल्लाह उसको एक गिफ्ट देता है, और गिफ्ट ये देता है कि ये सारे उसकी नमाजें माफ हो गई, ये सारे रोजे जो उस पर वाजिब थे माफ हो गए। इसी तरह से मैं बहुत एहतियात से मसला शरी बताना चाहता हूं, जो मेरा अपना एक स्टाइल है कि मेरा यह तरीका नहीं है कि मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान कोई फितना और फसाद फैलाया जाए, लेकिन एक फिकी मसला कि अगर कोई गैर शिया शिया होता और उसने इबादतें अंजाम दी मगर अपने तरीके से, जो हमारे तरीके से मसलन गलत, नमाज पढ़ी है हाथ बांध के, नमाज पढ़ी है अलहम के बाद आमीन कहा, ये तो मदरसे के बच्चे भी बता देंगे कि किन किन चीजों से नमाज टूट जाती, नमाज पढ़ी है गलत वजू से, पैर का मसा ही नहीं किया, पैर को धो लिया मसलन, अब ये नमाज गलत हुई, इस हालत में मर गया तो इसका जवाब देना है। लेकिन अगर वो मरने से पहले शियत में आ गया, इस नाशरी बन गया, उसने सही अकीदा ले लिया, तो जितनी नमाजें उसने गलत पढ़ी है वो सब की सब सही मानी जाएंगी, उसे दोबारा नहीं पढ़ना। रोजा रखा है लेकिन टाइम से पहले रोजा इफ्तार कर लिया, अपना कोई मोमिन ये गलती करेगा तो उसको जानबूझ के अगर ये काम करे तो रोजा भी गया, कजा भी करना है, कफारा भी देना, और पनिश अलग होगा कयामत में अगर तौबा नहीं किए। लेकिन सारी जिंदगी उसने रोजे रखे और सारे रोजे उसने टाइम से पहले खोल लिए, मुझे तफसील बताने की जरूरत नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे ही वो हक पर आ गया ये सारे रोजे उसके ऑटोमेटिक सही हो गए, इनको इनकी उसको कजा नहीं करना। सबसे अहम मिसाल हज की ले लीजिए, हज जो कि हमारे यहां हज में एक बहुत ही सीरियस मसले को हम लोग बहुत ही लाइट मूड में कभी मजाक के तौर पे भी बताते हैं। हज आखिर में जाके बीवी हलाल होती है जब तवाफ़ निसा करो। अगर कोई तवाफ़ निसा किए बगैर आ गया तो बीवी के लिए शौहर हराम, शौहर के लिए बीवी हराम। और खाली इस वक्त नहीं बल्कि अगर अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो जब शादी करेगा। अब ये मसला बहुत मशहूर है, लोग मजाक भी करते हैं एक दूसरे से, और यानी मसले का मजाक नहीं उड़ाते आपस में एक दूसरे से जो। अब ये मसला बाकी मुसलमानों के यहां नहीं है, एक ने हज किया और उस वक्त नहीं था वो शिया, तो तवाफ़ निसा वो जानता ही नहीं, उसने नहीं किया तवाफ़ निसा और फिर हज करके आ गया और अब जाके वो ईमान लाए, तो तवाफ़ निसा तो उसका पेंडिंग है। बीवी हलाल है के हराम, शिया होने के बाद उसको तवाफ़ निसा नहीं करना है, चाहे उसे चांस भी मिल रहा हो, जाके एहतियातन कर ले, अदल नहीं एहसान वो अलग बात है, उस पर लाजिम नहीं है वाजिब नहीं, क्योंकि ये तोहफा अल्लाह उसको देता है ईमान लाने के बाद के माजी की सारी गलतियां माफ। लेकिन ज़कात, फितरा, खुमस ये अगर गलत तरीके से उसने अदा किए, गलत का मतलब हमारे हिसाब से गलत, उसके हिसाब से सही, उस वक्त वो जिस फिक को फॉलो कर रहा था सही, नमाज में उसूल चल गया हमारे एतबार से गलत, अपनी फिक के एतबार से सही, शिया होने के बाद भी वो नमाज वैलिड, वो रोजा वैलिड, वो हज वैलिड, वो खुमस वैलिड नहीं, वो फितरा वैलिड नहीं, वो ज़कात वैलिड नहीं। वो अगर ये कहना चाहे कि खुदाबंदा उस वक्त मैं जिस फिक को मानता था उसके अंदर ज़कात का यही तरीका कार था, मुझे क्या मालूम था कि शिया में क्या ज़कात का तरीका है, अब मैं शिया हुआ आज इसे सही तरीके से ज़कात और फितरा और खुमस दूंगा, ताकि नहीं पीछे जितनी ज़कात और फितरा और खुमस दिया है उन सब का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट में कोई ऐसी गलती कर रहा है जो हमारे एतबार से गलत है उस एतबार से सही, तो ये खुमस का इतना अहम मसला कि जहां नमाज और रोजा और हज पीछे रह जाता है और माली वाजिबात आगे आ जाती है, यह हक़ुन नास है, यह कर्जा है जो इस ऐसे नए मोमिन की गर्दन पे भी बाकी है जिस बेचारे को पेमेंट के वक्त मालूम ही नहीं था। अब मैं इसकी तफसीलात में नहीं जा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं जब उसके लिए यह मसला, तो एक मोमिन के लिए जो शुरू से ही खुम्स के मसाले को जानता है या जानना चाहिए, उसके पेमेंट के अंदर अगर उसने लेजीनेस या काहिली या लापरवाही या केयरलेस होकर अदा कर दी तो काफी नहीं। मैं उधर दूसरे मसाइल की जानिब तो जा ही नहीं रहा हूं इसलिए कि ये मजलिस का टॉपिक नहीं है, कल एक बात आ गई थी तो उसको समझाने के लिए, बी केयरफुल, नमाज पढ़ें तो सही तरीके से, रोजा रखें तो सही तरीके से, हज करें तो सही तरीके से, और खुमस दें तो सही तरीके से, और फितरा दें तो सही तरीके से। लेकिन जो कि हमारे यहां ज्यादा अहम मसला खुमस का बन जाता है इसलिए मैंने इसको बताया, वरना यही सेम मसला फितरे का भी है। अच्छा ये तो बात बीच में इसलिए निकल आई कि कल ये जिक्र हुआ था और आज भी एग्जाम्पल जो कोट कर रहा हूं एग्जाम्पल नहीं थी, कि अदल का मतलब है 20%, एहसान का मतलब है एहतियातन आपने कहा मैं 25 दे रहा हूं, मगर वाजिब वही 20% एहतियातन, तो जितना वाजिब है उससे ज्यादा अदा करना। और ये हमारे यहां जैसा मैंने कहा नमाज में ये तरीका, जितने भी आप जमात के ऑर्गेनाइजेशंस के टाइम टेबल देखेंगे रोजे का टाइम जो है उससे 5 मिनट पहले इमसाक का टाइम, टाइम नहीं है 5 मिनट पहले, टाइम तो एग्जैक्ट 5 o'clock है, 4:55 पे इमसाक कर लो, कि जहां से वाजिब हो रहा एहतियातन 2 मिनट 3 मिनट पहले ही से अपने आप को रोजे में समझ लो। अगर किसी ने यह ख्याल किया कि रोजे का जो असली टाइम इस्लाम ने बताया डॉन फज्र, उससे 5 मिनट पहले रोजा वाजिब है तो वो हराम काम है। और ये तो फिर एग्जाम्पल तो इतनी है कि 2 घंटे का लेक्चर भी नाकाफी। तो अदल के बाद एहसान, मैं बताना ये चाह रहा हूं जो मैंने तकलीद के लिए जुमला कहा, जो मैंने खुमस के लिए जुमला कहा, जो मैंने 12 इमामी मोमिन के अकीदे के लिए जुमला कहा कि जो सही चीज पर है वो जब ब्लंडर करे तो ज्यादा अफसोस होता है। तकलीफ करते करते इनको क्या हो गया, खुमस सही तरीके से देते देते इनको क्या हो गया, सही अकीदा इनके पास है फिर ये कैसे काफिर बन गए। वही चीज उसी सीक्वेंस में ये बात आई कि हमारे यहां आधी बातों में ये राइज है, नमाज का जो एग्जैक्ट टाइम है उससे 5 मिनट बाद नमाज पढ़ते हैं एहतियातन। कभी कभार ये दो चीजें टकरा जाती है, दो एहसान। हज में औरत के लिए चेहरे पे नकाब डालना हराम है, लेकिन अगर नमाज आ जाए तो वो चेहरा खोलने का मसला, आप देखिए वहां पे ये नमाज की डिमांड ये कि जितना चेहरा खोल सकती हो उससे थोड़ा ज्यादा कवर कर लो एहतियात, और हज के एहराम की डिमांड ये कि जितना चेहरा छुपाना हराम है तो जरा ज्यादा अनकवर कर लो। लेकिन ये मसाइल का ये फॉर्मेट नहीं है, इतना भी जो मैंने बता दिया गलत किया। सिर्फ ये एक जुमले के लिए आपको इतना 10 मिनट मैंने परेशान किया, कौन सा जुमला कि नमाज में रोजे में इबादतों में हमारे यहां ये चीज राइज है, बाकी जिंदगी में हम इसको क्यों भूल जाते हैं। नमाजें ट्रेनिंग होती है प्रैक्टिकल लाइफ में शैतान से मुकाबला करने की। आज तकरीर का आखिरी हिस्सा खुद ब खुद नमाज के बारे में होने वाला, मुझे अभी से अंदाजा। रोजा ये प्रैक्टिकल लाइफ की एक ट्रेनिंग है, हज अमली जिंदगी की एक ट्रेनिंग है कि तुम हुक्म खुदा की खातिर खेमे में भी रह सकते हो, खाना पीना भी अपने आप पे हराम कर सकते हो, ये ड्रेस या लिबास ये भी अपने आप पे हराम करते, ट्रेनिंग है। तो ये वाली ट्रेनिंग हमको ऑलरेडी मिल रही है, हम आम जिंदगी में इसको इख्तियार नहीं कर रहे। अच्छा पहले ऐसा नहीं था, 40 साल पहले 50 साल पहले हमारे यूथ ये सवाल करते ही नहीं थे कि पेरेंट्स का कितना हक हम पर वाजिब है और कौन सा वाजिब नहीं। मैं यूथ के भी सेशन करता हूं जहां यूथ और मेरी लैंग्वेज या भाषा सिमिलर हो जाती है, कुछ ऐसे इलाके जहां वो उर्दू समझते हैं उर्दू में बात करते हैं। लेकिन आज ये पहला सवाल है कि वालिदैन की कितनी बातें वाजिब है उसके बाद वाजिब नहीं। जो मैंने कल एक इशारा किया, पहले शादी होती थी बहू आती थी कोई कभी ये सवाल नहीं करती थी कि शौहर के कितने ड्यूटीज मेरे ऊपर वाजिब है और कौन से वाजिब नहीं। शौहर सास की बात तो छोड़िए, नंदों की बात तो छोड़िए, हर चीज समझी जाती थी कि हर खिदमत अंजाम देना। आज मुसलसल मुझ जैसे जाहिल से लेकर आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात करने जो काफिले जाते वहां तक हर औरत की मसला पेश करती, क्या सास का कोई हक है हम पर, क्या नंद का कोई हक है हम पर। अब मुझे नहीं पता अंग्रेजी में सास को क्या कहते हैं और नंद को क्या कहते हैं, वह इन ला लगा के तो और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन बहरहाल उसको छोड़िए। आज पहला सवाल ये होता, और कौन औरत जो दीनदार, जो रिलीजियस है, जो पायस है, जो मुत्तकी है, जिसे ये फिक्र है कि जितना मुझ पर वाजिब है वो मुझे अंजाम देना, इसीलिए वो मर्जी से सवाल कर रही कि कितना हक मेरे ऊपर वाजिब है शौहर का और सास का और नंदों का। वरना जिसके पास तकवा नहीं है, खौफे खुदा नहीं है, वो तो ये पूछेगी भी नहीं, जो उसका दिल चाहेगा वो करेगी। ये पायस, ये रिलीजियस, ये मुत्तकी, ये आखिरत से डरने वाली, ये वो जिसको ये ख्याल है कि कब्र में भी सवाल का जवाब देना है और कयामत में भी, लेकिन स्टार्ट यहां से करते हैं। अच्छा ये हराम तो नहीं कर रही है वो, लेकिन जो इस्लाम सिखाना जा रहा है कि अदल के बाद अगला मरहला एहसान का, और जो तुम ऑलरेडी वुजू में कर रहे, कोहनी से हाथ धोना वाजिब है, थोड़ा ऊपर से हम शुरू करते हैं। जो गुसल में तुम कर रहे, जब सर और गर्दन को धोगे तो थोड़ा सा बॉडी को भी मिला लो उसमें। जो नमाज में तुम कर रहे हो, जो रोजे में तुम कर रहे हो, कि जो एग्जैक्ट टाइम है उससे 5 मिनट पहले इंसान, एग्जैक्ट टाइम से 2 मिनट के बाद इफ्तार, ये सब कर रहे हो ना, ये आम जिंदगी में भी लेकर आओ, ये बिजनेस में भी लेकर आओ, ये जॉब में भी लेके आओ, ये घर वालों से और फैमिली से जो तुम्हारे टर्म्स या रिलेशंस हैं उसमें भी लेकर आओ। ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, और यहां पे एक ऐसी हदीस जिस पर मैं एक घंटे की मजलिस कई बार पढ़ चुका हूं, और आज मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए बहुत मुख्तसर उसको बताऊंगा। शहीद दस्ते गैबे शिराजी भी एक बहुत मशहूर नाम हमारी रिसेंट हिस्ट्री का है, इनकलाब ईरान के फौरन बाद, जस्ट आफ्टर, जो हमारे बड़े बड़े उलमा शहीद किए गए, उनमें मुर्तजा मुतहरी का नाम है और दस्ते गैबे शिराजी का नाम है। तो खैर, यह हदीस उन्होंने भी अपनी उस किताब में लिखी जिसमें उन्होंने बताया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम शैतान इस्तेआज़ा, आऊज़ बिल्लाह का मतलब क्या है। तो यह हदीस उसमें भी उन्होंने कोट की। वो हदीस यह है कि रावी ने जाकर इमाम से सवाल किया कि मौला, शैतान हमारा असल मौजू, उसके यह हदीस बिल्कुल परफेक्ट है उस मौजू के लिए, लेकिन आज इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हाँ आगे तो आएगी बात, क्योंकि जो मेरा असल मौजू, देखिए इसके दो सवाल है रावी के, यही तो मेरा टॉपिक। मौला, शैतान से अपने ईमान को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट, जिसे आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट करे। इमाम ने कहा कि मुस्तहबात और मकरूहात की पाबंदी करे, ठीक। रावी ने कहा, और मौला, शैतान किसी मोमिन के ईमान को इजीएस्ट तरीके से किस तरह छीनता है? शैतान के लिए आसान काम नहीं आपका ईमान छीनना। अल्लाह आपको प्रोटेक्ट किए हुए आप एक ऐसे इलाके में आ गए हैं, रह रहे हैं, जहां पे एक पीस है, जहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर है, जहां, लेकिन ईस्ट अफ्रीका में भी ये होता होगा, और हमारे यहां पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन कि आप जाते हैं मगिंग वगैरह, किसी आदमी ने कहा मोबाइल दे दो, आदमी रिजिस्ट करता, यहां तक के फिर आखिर में गोली खा लेता अपने सीने पर। मोबाइल की वजह से कितने ही लोग मरते हैं, और क्यों मरते हैं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय शिकागो के कुछ इलाकों के, वो एक अलग चीज, वहां पे यह है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी वो आपको मार देगा कि हमारे इलाके में आए तो $10 भी जेब में रख के नहीं आए। लेकिन वैसे बाकी दुनिया में ये कि इस डर की वजह से लोग कीमती चीजें घर से लेके नहीं निकलते। लेकिन अब ये मोबाइल तो आजकल की मिसाल है, लेडीज के पर्स बहुत ज्यादा ये मगिंग होती है, छीने जाते हैं, आसानी से कोई नहीं देता। जब छोटे से 100 पाउंड या 50 पाउंड की चीज को बचाने के लिए आदमी पूरी कोशिश करता और रिजिस्ट करता, तो कैसे मुमकिन है कि शैतान आपका ईमान छीने और आप उसको आसानी से जाने दें? नहीं, आप रिजिस्ट करते हैं, चाहे आपको भी मालूम ना हो कि आप रिजिस्ट कर रहे हैं। सुबह को आंख खुल गई, आज बड़ी थकन है, नमाज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी ना किसी तरह से उठे और नमाज पढ़ी। आपको नहीं पता कि ये जो 4 मिनट 5 मिनट आपने बिस्तर पे गुजारे, ये आपकी शैतान से जंग हो रही थी, वो आपका मोबाइल छीनना चाह रहा था, आप रिजिस्ट कर रहे थे, आखिर में आप कामयाब हो गए। आपको नहीं पता लेकिन जंग हो रही, आदत थी कभी, अब छोड़ दिया आपने, लेकिन बहुत ही अच्छा कहीं सॉन्ग या गाना चल रहा, एक मरतबा कान उधर लग गए, दिल चाहता है कि 5 मिनट के लिए सुन लो, नहीं आपने रिजिस्ट किया कि हराम हराम है, अब तक मैंने अपने आप को बचाया, अब मैं क्यों ये गुनाह करूं। आपको नहीं पता आप क्या काम कर रहे हैं, आप शैतान से फाइट कर रहे हैं और अपने ईमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी फाइट हम दिन और रात कितनी मरतबा करते हैं, क्योंकि शैतान नजर नहीं आता है तो हमको नहीं पता होता कि ये हम एक जिहाद कर रहे हैं, ये हम एक जंग कर रहे हैं शैतान से। जो भी गुनाह आपके सामने आए और एक लम्हे के लिए आपकी अटेंशन उधर हो जाए, दिल चाहे कि चलो कभी कभार तो अल्लाह भी माफ कर देता है, लेकिन आप कहें नहीं मुझे नहीं करना यह गुना, तो मोमिन आराम से अपना ईमान नहीं छोड़ता, पूरी कोशिश करता है शैतान से जंग करके ईमान को बचाने। शायद उसको भी मालूम ना हो जो मैंने एक इशारा कर दिया, तो दिन और रात आपके साथ ये होता होगा, कभी झूठ बोलने का दिल चाह, कभी किसी की गीबत करने का मूड हो गया, कभी गाना सुनने का, कभी बेहिजाब किसी पार्टी में जाने को, रिजिस्ट करके अपने आप को बचाया। ये वही आपकी और शैतान की जंग। तो मौला, शैतान के लिए मोमिन का ईमान छीनना इजीएस्ट तरीका शैतान के पास क्या? वरना तो हर मोमिन रिजिस्ट करेगा। इमाम ने कहा मुस्तहबात व मकरूहात। अब दो सवाल, पहले सवाल और दूसरे सवाल में मैंने 15 मिनट आपके ले लिए, तो आप भूल गए कि बात क्या चल रही थी। मौला, शैतान से अपने ईमान को बचाने का बेस्ट वे क्या? इमाम ने कहा मुस्तहबात व मकरूहात। और मौला, शैतान हमारे ईमान को सबसे ज्यादा आसानी से कैसे छीन के ले जाता? कहा मुस्तहबात व मकरूहात के जरिए। दोनों सवालों का एक ही जवाब दिया। लुकमान किसी के गुलाम है, आका ने कहा कल मेरे कुछ बहुत ही वीआईपी किस्म के गेस्ट आ रहे हैं, बेहतरीन खाने पकाना। और लुकमान ने अगले दिन 50 डिशेस पकाई, सब में जबान, ये जानवर की जबान या टंग होती है, इसकी डिशे बना के रख दी, 50 की 50 डिश। आका हैरान होके कहता है ये मेरे वीआईपी मेहमान क्या चीज पका के दी? कहा कि आपने कहा था सबसे बेहतरीन चीज पकाना, जबान से बेहतर इस कायनात में अल्लाह ने कोई चीज पैदा नहीं की है। इसी से जिक्र खुदा होता है, इसी से कुरान पढ़ा जाता है, इसी से दुआएं की जाती है, इसी से सलाम भेजा जाता है, इसी से मोमिन का दिल जीता जाए। 2 घंटे का लेक्चर, उस वक्त कोई जमात तो थी नहीं कि कहा जाता हो लुकमान से कि 15 मिनट तुम्हारा टाइम है, इससे आगे ना जाना, बोलते चले जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जफा भी इस वक्त जो जमात है उसने मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इन जर्नल बात। अब क्या ऐसे फलसफी से आका क्या बहस करे का? अच्छा, इसका इम्तिहान लेते। कहा चक्कल, मैं अपने कुछ हिडन एनिमीज को बुला रहा हूं, सबसे खराब खाने पका के रख देना। जैसे एक साहब ने अपने घर के कुक को एक लिस्ट दी, कहा ये बेहतरीन खाने, कल मेरे मेहमान आ रहे कल से। कुक ने कहा मैं रोज पकाऊंगा। कहा नहीं, ये तो मैंने इसलिए दी कि इनमें से कोई खाना भी ना पकाना, क्योंकि मेरी सास आ रही है। तो अब खुलासा ये है कि सास खाली औरतों का मसला नहीं है, मर्दों का मसला भी होता है, लेकिन मैं अपने ट्रैक से हट रहा हूं, वापस आता हूं। लुकमान ने अगले दिन, अब ये लफ्ज अच्छा तो नहीं है, अल्लाह की नेमत के लिए वर्स डिशेज पकाई और सारी डिशेज जबान वही चीज जो कल थे वही खाने को माइक्रोवेव में गर्म करके रख। आका ने कहा ये क्या, मैंने तो कहा था कि बदतरीन। कहा जबान से बदतर और कौन सी चीज है? इसी से गीबत की जाती है, इसी से झूठ बोला जाता है, इसी से दिल तोड़ा जाता है, इसी से गाने गाए जाते हैं, इसी से हराम होते हैं। एक ही चीज अच्छी भी है बुरी भी। इमाम ने कहा एक ही चीज शैतान का भी बेहतरीन टूल है तुम्हें गुमराह करने का, और एक वही चीज तुम्हारा बेहतरीन टूल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अब रावी हैरान हुआ, इमाम ने एक्सप्लेन किया जिसकी तफसील में जाने का फिलहाल वक्त नहीं है, और मैंने कहा कि ये तो मेरा असल मौजू है, शैतान कैसे ईमान छीनता है, मोमिन कैसे ईमान को बचाता। मगर बहुत वाजह बात है कि जब अदल और एहसान के साथ जिंदगी गुजारे, वाजिबात अदा करें, फिर मुस्तहबात अंजाम दें, अपने ईमान को बचा लिया। 20% खुमों से आपने 25 निकाल दी। मुझे फिकी मसाला मालूम है कि बास केसेस में हर एक को 25% ही खुम्स देना, वो छोड़ दीजिए, इतनी टेक्निकल बातों का मौका नहीं है आज तो नहीं। लेकिन एक इंजर्नल बात, पहले आपने रोजाना की 17 रकत नमाज पढ़ी, फिर नमाज शब के लिए खड़े हुए, 17 रकत है अदल, और फिर नमाज शब पढ़ना या मगरिब के 4 रकत नाफिला पढ़ना, यह एहसान, अपने ईमान को आप बचा रहे। और शैतान कब आपका शिकार करता है? कि जब आपने अदल को छोड़ा, वाजिबात अंजाम नहीं दी, खुले खुले हराम कर रहे, मुस्तहबात और मकरूहात की बहुत पाबंदी कर रहे। गदीर का रोजा नहीं छोड़ना है रमजान के रोजे रखने के लिए, न सेहत है न वक्त। और एक बहुत मुश्किल मंजिल आ गई, कहीं इसमें तौहीन ना हो इबादत। हज वाजिब है, नहीं जाना है जियारत पे जाना। जियारत की अहमियत कल आई थी, कोई ये ना समझे कि मैं आका हुसैन की जियारत के खिलाफ कोई बात कर रहा हूं, लेकिन बात ये हो रही है कि हज किया ये अदल है अगर वाजिब है तो, और फिर जियारत पे बार बार गए ये एहसान। तो अदल के बाद एहसान जितना वाजिब है उससे ज्यादा वाजिब अंजाम देके करो। औरत के लिए जितना अपने शौहर का हक वाजिब है उससे ज्यादा अदा कर रही, जितना अपनी सास का हक वाजिब है उससे ज्यादा अदा कर रही, जितना अपनी नंदों का हक है उससे ज्यादा अदा कर रही, शौहर के लिए जितना बीवी का हक वाजिब है उससे ज्यादा दे रहा, अपने ईमान को बचा रहे हैं ये लोग। ये लोग खाली एक नेकी नहीं कर रहे, अपने ईमान को बचा रहे। और ये जो परवरदिगार का तरीका, ये अल्लाह के मौला होने की डिफिनेशन है। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह तुम्हारे ईमान को बचाता। जब अल्लाह तुम्हारा तो तरीका क्या बताया अल्लाह ने ईमान बचाने का, जो वाजिबात है उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के भी कुछ मुस्तहबात अंजाम दो। फिर वही जुमला कह दो, हमारे यहां नमाज और रोजे में लोगों को यह मालूम है आज के इस 21st सेंचुरी में भी, कितने मोमिनीन को मैं जानता हूं जो रमजान के रोजों के अलावा पूरा रजब और पूरा शाबान के रोजे भी रखते हैं। इबादतों में यह चीज है, लेकिन जो डेली लाइफ हमारी है, हुकूक मोमिन हमारे हैं, फैमिली लाइफ हमारी है, औलाद और पेरेंट्स की लाइफ हमारी है, उसमें यह चीज नहीं, पहले थी। फिर जुमला रिपीट कर दूं अगरचे टाइम बहुत कम, पहले कोई बहू आके नहीं कह पूछती थी कि ससुराल पहुंचकर अब सास और नंद के कितने वाजिब हक हैं, कितने मुस्ताहब हक हैं। आज पहला सवाल यही होता, एकदम मेंटेलिटी जो चेंज हो रही, ये स्टार्ट है उस स्टेज का कि जहां पे शैतान ने भी कहा था लअग्वियन्नहुम अजमईन, ऐ खुदा तेरे एक एक बंदे को बहकाऊंगा, और इमाम ने भी कहा कि आखिरी जमाने में ईमान लूज होगा, आखिरी जमाने में नमाजें ज्यादा होंगी, वालिदैन की बेहतरामी भी ज्यादा होगी, आखिरी जमाने में हज ज्यादा होंगे, बीवियां अपने शौहर की नाफरमानी भी ज्यादा करेंगी, दोनों रिवायतें हमारे पास हैं। आखिरी जमाने में गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, ये हर एक को मालूम है, लेकिन इसका अगर आप ये नतीजा निकाल रहे हैं कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे और रोजा नहीं रखेंगे और हज नहीं करेंगे और खुमस नहीं देंगे तो गलत है। गुनाह बहुत ज्यादा होंगे लेकिन नमाजें उससे भी ज्यादा पढ़ी जाएंगी। मासूम का वो जुमला, मसाजिद हम मामूरा व मिन हिदायतिहिम खाली, मस्जिदें नमाज पढ़ने वालों से भरी भी होंगी। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाइए कि 20 साल बाद का विजन रख के कितना बड़ा इमाम बड़ा बनाना है, वो 2 साल में छोटा लगने लगेगा। हज जो पैगंबर ने आखिरी हज में कहा कि ये हज अभी तो ये मस्जिद यमन तक पहुंचेगी तब भी लोग इसमें नहीं आएंगे, इतने हाजी बनेंगे आखिरी जमाने में। मगर वालिदैन, औलाद, बिजनेस, मोमिन का हक, शौहर बीवी का रिलेशन, ये सब में गुनाह ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कहां से ये स्टार्ट होता है, जब ये सवाल आप करते हैं कि वाजिब कितना है मौलाना, बस उतना बताइए, उससे ज्यादा नहीं। जो आदत, जो हैबिट, जो ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिस इस्लाम ने इबादतों के जरिए करवाई, उसको जिंदगी में लाना। तो खैर, ये तो इसलिए बात हो गई कि आखिरी जमाने में ईमान खत्म होगा। वो जो अटैक शैतान का है वो नमाज की तरफ से नहीं है, वो हुकूकुन नास की तरफ से, और मजीद अभी इसमें बातें आई। लेकिन यहां पे रुक के एक बात मैं समझा दू, जो कल मैंने बुकरात हकीम का वाकया बयान किया, वो तो खैर एक तारीखी हकीकत है, लेकिन हदीसों में भी उसकी वजाहत कि अल्लाह के अदल का तकाजा यह है कि अल्लाह पहले रेमेडी पैदा करता है फिर कोई डिजीज आती, अल्लाह पहले सोल्यूशन देता है फिर कोई प्रॉब्लम आता। मसलन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शैतान इस दुनिया में। अल्लाह ने इस दुनिया में शैतान से पहले आदम को भेजा, पहले हादी आया है फिर गुमराह करने वाला आया, और ये अल्लाह का तरीका हर जगह, यहां तक फिर वो मंजिल आ जाती जहां पर, चूंकि वक्त आज बहुत गुजर गया है, जल्दी जल्दी एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सा मजलिस का सीक्वेंस आपको टूटा हुआ लगे, जैसे जरा सीक्वेंस कम हो गया है, तो वो कल इंशाल्लाह जब पूरा टाइम होगा तो मैं मजीद इसके सीक्वेंस का ख्याल करूंगा। लेकिन ये बात है मेरे सब्जेक्ट में और इसी स्टेज पर आना, अल्लाह ने हमारे और आपके ईमान को बचाने के लिए विलायत, खुद अल्लाह वली बना वो हमारे पास तो नहीं आता, रसूल को वली बनाया वो हमारे पास आके चलेगा, और फिर इमाम को वली बनाया जो कयामत तक इमामत रहेगी। ये जो विलायत है ये हमारे ईमान को बचाने के लिए, मगर खुद विलायत को बचाने के लिए भी जरूरी है कि कोई प्रोटेक्टर आए। अब आप कहेंगे जुमला तो बहुत अजीब है, वही मैंने कहा कि समझाने का टाइम नहीं, छोटी सी मिसाल दे, میڈیسنز یا دوائیاں، یہ انسان کی جان بچانے کے لیے ہوتی، بلکہ خاص طور پہ جو کیٹیگری ہے لائف سیونگ ڈرگز، وہ دوائیاں کہ جو انسان کی جان بچانے کے لیے، لیکن خالی دوا کافی نہیں ہے، وہ دوا کی حفاظت کے لیے بھی ساتھ میں انسٹرکشن ہوتی ہے، اس ٹمپریچر میں رکھیے گا، بہت سی دوا ہیں کہا اس کو فریج میں رکھیے گا، بہت سی دوا ہیں کہا لیکن اس کو فریزر، بلکہ دوائیں تو شاید فریزر میں کوئی بھی الاؤڈ نہیں، وہ دوا جس کا کام ہے ہمیں بچانا، لیکن خود اس دوا کو بچانے کے لیے بھی انسٹرکشن ہوتی ہے، ورنہ آپ دوا استعمال کریں گے مثلا ایکسپائری ڈیٹ اور آپ نے دوا استعمال کی، فائدہ نہیں ہوا، دوا میں خرابی نہیں، آپ نے دوا کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تھا. اور ایگزامپل تو بہت ہوں گی، ٹائم کم، تو جو ہماری حفاظت کے لیے، خود اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کو انتظام رکھ کرتا، ولایت ہماری ایمان کی حفاظت کرتی، اور ولایت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے ایک سسٹم بنایا. اور عجیب بات یہ، عجیب نہیں اللہ کا طریقہ، کہ ولایت کا سسٹم بعد میں بنایا، جو ولایت کو بچانے والا سسٹم ہے وہ اللہ نے پہلے بنایا. جملہ سمجھانا پڑے گا، بس کیونکہ آج پتہ نہیں کیوں گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود شاید کراؤڈ ہے یا ویدر چینج ہو گیا ہوگا، تو بہت لمبی بات نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے اللہ کرے روز اتنی گرمی ہوا کرے تاکہ مولانا کسی طرح ٹائم پر تو ممبر سے اترے. بہت مختصر ایک بات، یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ولایت، لیکن خود ولایت کو بچانے کے لیے، جیسے آپ میڈیسنز کے پیکٹ پر پڑھتے ہیں کہ کہاں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنا، ولایت کو بچانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، اور اپنے طریقے کے مطابق ولایت بعد میں ہمیں دی، اس کے حفاظت کا انتظام پہلے دیا، وہ اللہ کی سنت. اور اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کی جانب، معراج، ascending to skies, traveling towards heaven, جو بھی آپ کہیے، مجھے انگلش ونگلش نہیں آتی ہے. معراج، پیغمبر اس دنیا سے آسمانوں کے لیے گئے، بہت اہم یہ سفر ہے پیغمبر کا. کئی زیارتوں میں پیغمبر کو اسی صاحب معراج کے حوالے سے یاد کیا گیا، لیکن مزید معراج کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں. معراج میں اللہ نے پیغمبر کو بہت سارے گفٹ دیے، کیونکہ یہ تو ایک ہمیں اور آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ پلٹانا، کوئی نہ کوئی اس کو تحفہ دینا. اور کئی دعاؤں میں بھی یہ جملہ، خاص طور پر جب آپ خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں تو مسجد الحرام کے دروازے پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، فرسٹ دعا ہے آپ کی عمرے اور حج میں، فرسٹ دعا، وہ احرام کی دعائیں مکے سے باہر پڑھی جاتی ہیں، پہلی دعا مکے میں، اور اس میں یہی کہ اے خدا، ہر مہمان کو گفٹ ملتا ہے اپنے ہوسٹ کی جانب سے، بس اولا شے ان تو تینی، مجھے پہلا گفٹ یہ دے، اور پھر وہ دعائیں بہت ساری ہیں، میں کہیں اور چلا جاؤں گا. تو اب ایک عام آدمی کے گھر جائے تو حکم ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، کوئی تحفہ دینا. اور اگر کائنات کا سب سے عظیم انسان کائنات کے خالق رب العالمین کے پاس جا رہا تو اللہ خالی ہاتھ پلٹا دے، یہ پوسیبل ہی نہیں. اللہ نے معراج میں تحفے دیے، اور بہت سارے تحفے دیے، دو بہت اہم، ایک ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایک اس کو بچانے کے لیے. یاد رکھیے کہ معراج کے سفر کا مقصد تھا ولایت علی کا اعلان، لوگوں کے سامنے چاہے یہ اعلان غدیر خم میں ہوا، لیکن معراج کے سفر میں اسلام میں یہ عقیدہ شامل ہوا. اسلام تو مکمل شروع دن سے ہے، لیکن اسٹیجز میں عقیدے آئے ہیں نا. پیغمبر کا معراج کا سفر عجیب سفر ہے. میں بہت جلدی آج کی بات سمیٹ رہا ہوں، اور کچھ باتیں کل کے، کافی باتیں اس حوالے سے بھی نامکمل ہے، کل آ جائیں گے. پیغمبر کا معراج کا سفر بہت اہم. معراج کے سفر نے کم از کم دو چیزیں تو بہت کلیئر کر دی، मेराज के सफर में उसूल दीन कंप्लीट हुए हैं और मेराज के सफर में फुरू दीन स्टार्ट हुए। एक ही सफर है पैगंबर का, एक ही जर्नी, उस एक जर्नी में उसूल दीन कंप्लीट हो रहे हैं और उसी सफर के अंदर फुरू दीन स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि मेराज से पहले तौहीद का अकीदा आ चुका था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कुफले हु, कयामत का अकीदा आ चुका था, तीसवें पारे के 90% सूरे मक्के के हैं, बल्कि पूरे के पूरे सूरे और मेराज से पहले के। सूरह यासीन की वायत जिसमें वो उमैया इब्ने खलफ मजाक उड़ा रहा है कयामत के अकीदे का, वलम यरल इंसान इन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन, लंबी बात हो जाएगी, कयामत का अकीदा आ चुका था, रिसालत का अकीदा तो मक्के में आ ही गया था, पैगंबर ने अपना इंट्रोडक्शन ही ये कराया, इमामत का अकीदा नहीं आया था, ये आया था मक्के ही में लेकिन मेराज के सफर में। जो मौला कहते हैं अना आयतुल कुबरा, अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं हूं, अल्लाह की सबसे अजीम निशानी मैं हूं। मौला कहे खुदबा, अना आयतुल्लाहिल कुबरा, अना आयतुल्लाहिल उज़्मा, छठे इमाम की हदीस है, नहनो आयतुल्लाह अल कुबरा, हम अल्लाह की बड़ी निशानियां। ये मेराज के हवाले से कहा, क्योंकि जो मेराज की आयत आई है ना, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना, पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को आसमानों पे ले गया ताकि उसे अपनी कोई निशानी दिखाए। तो मौला ने कहा ये निशानी से क्या मतलब है, मैं हूं वो निशानी जो मेराज में दिखाई गई, आयतुल्लाहिल कुबरा अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी तो मैं, मुझे दिखाने के लिए मेरे रसूल को मेराज के सफर पे बुलाया गया, तो मुझे दिखाने का मतलब क्या है, यानी अकीदाए इमामत व विलायत। ये मेराज के सफर का पहला तोहफा, या उसूल दीन मुकम्मल हो गए, तौहीद और नबूवत और कयामत सब पहले से थे, मेराज में इमामत भी आ गए विलायत। और फुरू दीन कितने मदरसे के बच्चे तो इंग्लिश लेक्चर में बैठेंगे और उनको वहीं बैठना चाहिए, लेकिन बड़ों से भी पूछ लू कि फुरुए दीन जितने उनमें रोजा मदीने में पहुंच के वाजिब हुआ, जकात मदीने में वाजिब हुई, खुमस मदीने में वाजिब हुआ, हज मदीने में वाजिब हुआ, जिहाद मदीने में वाजिब हुआ, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्राए फुरुई, ये सब मदीने में वाजिब हुए। नमाज वो वाहिद इबादत है जो मदीना जाने से पहले मक्के में वाजिब हुई और मेराज के सफर में नमाज वाजिब हुई। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, मेराज क्या है, मेराज है नमाज की बर्थडे एनिवर्सरी सालगिरह, मेराज नमाज उस दिन आई। तो उसूल दीन मुकम्मल हो रहे हैं और उसी सफर में फुरू दीन शुरू हो रहे हैं, यानी दूसरे अल्फाज में जहां अली की इमामत मुकम्मल होती है वहां से मोमिन की नमाज शुरू होती है। अली की विलायत और इमामत को नमाज से अलग नहीं कर सकते हो, अली की इमामत मुकम्मल होती है, नमाज वहां से स्टार्ट हो रही है। और यहां वो जुमला कह दूं, इसके बाद इसी नमाज के बाद को जरा आगे बढ़ा के मंजिल मसाइब पर आना है, लेकिन वो जुमला कह दूं जिसको मुकम्मल कल कर मुकम्मल आज कर रहा हूं लेकिन तफसील शायद कल आ जाए, वो ये तो हुआ मेराज का वो तोहफा जिसका ताल्लुक हमारे अकीदे से, अली की विलायत और इमामत, ये मेराज के सफर का अहम तरीन मकसद। और नमाज विलायती अली को बचाने का अहम तरीन जरिया है, विलायती अली बचती है नमाज से लेके। एक लफ्ज हमारे यहां और बहुत राइज है, लफ्ज तो नहीं कहिए, एक हिस्ट्री हमको मालूम, शहजादी फातिमा को अल्लाह का रसूल तोहफा मेराज कहा करता था, मेरी ये बेटी मेराज का तोहफा। बल्कि शहजादी के बदन को जब सूंघते थे और अक्सर सूंघते थे तो कहते थे कि इससे मुझे जन्नत के बाग के उस सेब की खुशबू आ रही है जो मेराज की रात मुझे खिलाया गया, जिसके जरिए से फातिमा दुनिया में आई। शहजादी कौनैन के फजाइल का आगाज यहां से होता है कि फातिमा का एक नाम है तोहफा, हदिया, हिबवा, मेराज। अल्लाह ने मेराज की रात फातिमा अता की पैगंबर को। अच्छा, अब एक बात यहां और कह दूं, और वो ये कि अल्लाह के रसूल को एक बार मेराज नहीं हुई है, कई बार मेराज हुई। यह अपना नजरिया, आप मुसलमान शायद इसको नहीं माने, लेकिन मुझे पता है कि आप मुसलमानों में से भी बहुत से उलमा हमारे साथ, पैगंबर को कई बार मेराज हुई। जो पहली मेराज थी, पहली, उसमें जन्नत का वो सेब खिलाया गया जो फातिमा को इस दुनिया में लाने का जरिया बना, और जो आखिरी मेराज थी उसमें विलायत अली का ऐलान हुआ। दीन शुरू होता है फातिमा के वजूद से, खत्म होता है अली की विलायत के ऐलान पर। यह है पूरा इस्लाम, फातिमा से अली, और अली की विलायत से पहले फातिमा दी गई। क्यों? इसलिए कि अली की विलायत को सबसे ज्यादा बचाने वाली जात का नाम फातिमा। शहजादी का रोल इस्लाम में कोई छोटा रोल नहीं है, अली की विलायत और इमामत को बचाने वाली पर्सनालिटी फातिमा। तभी शहजादी के अलकाब में एक लकब जो हमारे यहां कम मशहूर है क्योंकि जरा सी डिफिकल्ट अरबी, फातिमा है, राजिया है, मर्जिया है, बतूल है, उम्मे हबिया है, कितने नाम, एक है अल मुदाफे, डिफेंड करने वाली। किस चीज का डिफेंड? ना वो बदर में गई, ना वो उहद में गई, ना वो खंदक में गई, ना किसी मैदान जंग में गई। कहा के डिफेंड करने वाली विलायती अली को, विलायती अली को बचाने वाली। और उस जुमले की तशरी सिर्फ एक लफ्ज काफी, आगा अमीनी का मक्के का वाकया अपने जहन में लेके आ जाइए, मेरी बात मुकम्मल होगी। तो मेराज, असल जो मेराज है मशहूर, जिसका तस्किरा कुरान में सूरह बनी इसराइल की इस पहली आयत में आया जो अभी मैंने तिलावत की, और सूरह नजम में आया फकान अकाब कौसैन और अदना की आयत जहां पे आई, दो जगह मेराज का जिक्र। यह आखिरी मेराज, पहली मेराज फातिमा को लेके आई, आखिरी मेराज विलायत अली को। मगर आखिरी मेराज में विलायत अली के साथ नमाज भी वाजिब की गई, यानी रसूल जब दुनिया में आए मेराज करके, तो दो तोहफे लेके आ रहे हैं। एक हाथ में अली की विलायत है, एक हाथ में असलात यानी नमाज का हुक्म है। और यहां पे मैं ये भी बता दूं, अब ये जो हदीस मैं पढ़ रहा हूं ये नकले बिल माना, वक्त नहीं है कि एक्चुअल वर्डिंग पढ़ के समझाऊं, मैं डायरेक्ट ही उसके इंटरप्रिटेशन पर जाता हूं। पैगंबर ने आके बताया कि मैं मेराज पे गया तो मैंने वहां क्या देखा, अल्लाह की नेमत है, जन्नत, अंबिया के स्टेटस, हर आसमान पे कोई नबी मिला, नेक लोगों के नेकियों का रिवार्ड और जजा, और फिर आखिर तो वो मंजिल आ गई कि जिब्राइल भी रुक गए, भाई मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आप जाइए, पैगंबर गए वहां, वो अजमत इलाही देखी, वो शान, वो ग्रेस जिसने नमाज को बनाया। नमाज पैगंबर के सफर मेराज में वहां बनी जहां जिब्राइल साथ छोड़ के चले गए। पैगंबर आगे बढ़े, पर्दा आया, पर्दा हटा, पैगंबर ने अल्लाहु अकबर कहा, सात पर्दे आए, सात अल्लाहु अकबर कहे। आज भी नमाज में मुस्ताब है कि तकबीरतुल इहराम के अलावा छह अल्लाहु अकबर और कहो, और बाकी कुछ तफसील है जिसको मैं, वक्त नहीं है, कल के लिए छोड़ता हूं। फिर पैगंबर ने बताया कि मैंने और क्या क्या देखा। कुरान ने कहा फकान अकाब कौसै और अदना, अल्लाह और बंदे के दरमियान दो कमानों का फासला रह गया, और अदना या उससे भी कम का। अब जैसे जैसे पैगंबर ये सुना रहे वैसे वैसे मुखलिस सुनने वाले, एक तो मजाक उड़ाने वाला मजमा होता है, एक पूरा अटेंटिव हर लफ्ज पे ईमान लाने वाला, सलमान फारसी जैसे, अबू ज़र ग़फ़ारी जैसे, हमारे यासिर जैसे। जब पैगंबर ने अपने सफर की वो डिटेल मुकम्मल की, जिससे ज्यादा बताने का पैगंबर को इज़्ज़त या ऑर्डर नहीं था, बस हबीब हर बात नहीं बताना, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आम मुसलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो ये सब देख के आ गए, हमारा भी बहुत दिल चाहता है कि हम भी ये चीजें देखें। ये मेरे साथ अक्सर पेश आता था और अभी भी पेश आता, वो ये है कि मैं दुनिया में निकला मजलिस के लिए या दीन के काम के लिए, अब जब वापिस गया, खास तौर पर जब मैं पाकिस्तान में था, अपने बच्चों को बताया कि ये देखा और ये देखा और ये देखा और ये देखा, वो बच्चे हैं कहते हैं कि बाबा आप अकेले चले गए, हमें भी ये चीजें दिखाते, हमें भी ले जाते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे जैसे उनको बता रहे हैं, बच्चे भी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। मुसलमानों ने सुना कहा या रसूल अल्लाह अकेले अकेले आप देख के आ गए, हम आपका कलमा पढ़ने वाले, मोहब्बत करने वाले, आप पे जान कुर्बान करने वाले, जरा हमें भी ये मनाजिर दिखा दीजिए। पैगंबर ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात, मैंने मेराज हासिल किया, तुम भी मेराज पे जा सकते हो। अब लोग चौंके, या रसूल अल्लाह हमको भी मेराज में ले? कहा हाँ, अस्सलातो मेराजुल मोमिन, तुम्हारी रोजाना की नमाज मोमिन की मेराज है, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देती। ये अलग बात है, तुम्हें पता ही नहीं तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। तभी रावी ने कहा, मौला नमाज में मेरे जहन में ख्यालात बहुत आते हैं। कहा बस हमेशा नमाज पढ़ते वक्त नीयत के वक्त की देख तसव्वुर कर लो कि तुम अल्लाह के सामने हो और अल्लाह को देख रहे हो फेस टू फेस। अजब रावी ने कहा, मौला ये तो बहुत मुश्किल है। तो कहा, कम अज कम इतना समझ लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा हो। पैगंबर जो उस मेराज पर गए वो मेराज आपको दे गए उस जब वापिस आए। हर नमाज मेराज मोमिन। और यहां पे हमारे पास वो हदीस भी आ गई जिसके साथ ही मैं मंजिल मसाइब में दाखिल हो गए। अहले बैत का वो काफिला जिसके मसाइब दो दिन इस तरह पड़े गए कि 28 रजब को मदीने से निकला और कल के मसाइब थे कि करबला पहुंचा। अब आज मसाइब की तफसील में जाने से पहले मसाइब ही का टुकड़ा पढ़ रहा हूं। फिर ये काफिला अपने पूरे जिहाद को मुकम्मल करके मदीने आ गया। वापिस मदीने आए, अहले बैत का मदीना आना, मदीना तो जद्दिना ला तकबलीना का उम्मे कुलसूम का मरसिया उसी मौके पर है, आ गया। अब जब ये वापिस मदीने पहुंचे तो सारा मदीना पुरसा देने के लिए अहले हरम के पास आए। अच्छा, जो औरतें मदीने की थी वो खवातीन के पास चली गई, तो वहां तो मजमा डिवाइड हो गया। कुछ औरतें जनाब जैनब के पास है, कुछ कुलसुम के पास है, कुछ लैला के पास है, कुछ रबाब के पास है, कुछ फरवा के पास है, कुछ फिजा के पास है, यानी खवातीन तो बहुत सारी हैं। मर्द जितने हैं वो सारा मजमा सज्जाद के पास जमा हुआ। मर्दों में तो एक ही मर्द वापिस आया है ना। अब ये सारा मजमा यहां आ गया। अहले बैत रहते कहां है? महल्ले बनी हाशिम। महल्ले बनी हाशिम कहां है? मस्जिद नबवी से दीवार मिला हुआ। जैसे आप यहां से जाएंगे मार्की में, वो महल्ले बनी हाशिम है, ये मस्जिद है रसूल। अब सारा मजमा महल्ले बनी हाशिम में आया। अब लोग आके पुरसा दे रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं। तो पुरसा, ये एक मैसेज आपको पहले दे रहा हूं, फिर मसाइब मुख्तसर रहेंगे आज, लेकिन फिर मसाइब पर आता हूं। जब पुरसा दे रहे हैं तो पुरसा तो किस तरह दिया जाता? आजम अल्लाह हो जूराना बे मुसाबिन अल हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही तो पुरसे के तरीके। एक आदमी ने, जाहिल था, ना वाकिफ था, ना समझ था, मारिफत का लेवल कम था, मुझे नहीं मालूम, उसने आके एक अजीब सवाल कर ली। ये सवाल कभी किसी मासूम से नहीं किया जाता। अल्लाह की कोई हुज्जत उससे ही सवाल करने ही गलत, उसने कर लिया। कहा, फर्जंद रसूल, में 28 रजब को भी इसी मदीने में था और आपके बाबा का काफिला मेरे आंखों के सामने मदीने से चला था। क्या शान थी काफिले की। अलम को देखता था तो अलम ग्रीन कलर का था, निगाह डालता था कहीं अब्बास, कहीं अकबर, कहीं औन, कहीं मोहम्मद, कहीं कासिम, कहीं औलाद जाफर तैयार, कहीं औलाद मुस्लिम इब्ने अकील, कहीं खुद मुस्लिम इब्ने अकील, भरा हुआ काफिला था। मौला आज भी इस मदीने में मैं हूं। काफिला वापिस आया, अलम पे निगाह पड़ी तो आज अलम काला नजर आ रहा है, सब्ज अलम नहीं। अब पूरे काफिले को देखता हूं, सिवाय आपके मर्दों में कोई नहीं। मौला सिर्फ ये बता दीजिए कि आपका बाबा पूरा भरा हुआ काफिला लेकर गया, पूरा काफिला लुटा के आप वापिस आए, तो आप कामयाब होके आए कि नाकाम हो गए, जीत गए कि हार गए? हुज्जत खुदा से कभी ये सवाल नहीं होता। हुज्जत खुदा मारा जाए तब भी वो जीत जाता, गर्दन कट जाए तब भी वो कामयाब आता, लेकिन उसने सवाल कर ली। पूरा मजमा लोग पुरसा दे के रो रहे हैं, इसने एक अजीब सवाल किया कि सारी कुर्बानियों का नतीजा आपके हक में निकला कि यजीद के फेवर में? इमाम ने कहा, शख्स मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूं, पहले मेरा छोटा सा काम तो कर दे। बोले, बताइए। कहा, ये सामने मेरे नाना की मस्जिद है ना, जाके दो रकत नमाज पढ़ के वापिस आ जा। वो गया, दो रकत नमाज पढ़ी और आ गए। कहा, मौला मेरे सवाल का जवाब? कहा, अब भी तुझे जवाब चाहिए? क्या मतलब मौला? कहा, तू खुद अपने सवाल का जवाब दे के आया। कहा, मौला मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने तो नमाज पढ़ी है। कहा, यही तेरी नमाज तेरे सवाल का जवाब। جب تک اس کائنات میں اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے سمجھ لو کہ میرا بابا اپنے مشن میں کامیاب آیا، وہ اسی نماز کو بچانے کے لیے میدان میں گیا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا جو علی یعنی الاوسط، بیچ والا علی، اور جو بڑا علی ہے میرا مولا کائنات کا ولی، اس نے میدان صفین میں کیا یہی جملہ نہیں کہا تھا؟ جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مولا یہ چلتی ہوئی تلواروں میں، برستے ہوئے تیروں میں، گرتے ہوئے نیزوں میں، کٹتی ہوئی گردنوں میں، اور نماز کا وقت آیا آپ گھوڑے سے اتر کے نماز پڑھ رہے، کہا اے ابن عباس اسی نماز کو بچانے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ تو علی کا جہاد ہو اس کا مقصد بھی ہے نماز، حسین کا کربلا ہو اس کا مقصد بھی ہے نماز۔ اور وارث حسین نے کہا جب تک نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نماز میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے۔ جو نماز کو لاپرواہی سے لیتا، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اصل میں ان انٹینشنلی یزید کا فیور کر رہا ہے کہ حسین کی کامیابی کو چھپا رہا۔ یہ تو یزید نے کیا تھا نا کہ حسین کی کامیابی پہ پردے ڈالو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مومن نماز پڑھتا بھی ہے اور ہر شب جمعہ گواہی دیتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو بچایا۔ اب ایک کربلا والا تو کبھی نماز نہ قضا کر سکتا ہے نہ لاپرواہی سے پڑھ سکتا، کیونکہ کربلا میں تو اس کو پتا شب عاشور آقا حسین نے کہا بس ایک رات کی مہلت لے کے آ جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات بھی ساری رات اللہ کی عبادت و نماز پڑھتے ہوئے گزاروں۔ زندگی میں کوئی رات میری ایسی نہیں گزری جو بغیر نماز کے ہو۔ رات میں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ صرف دو، ایک مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، 7 رکعت نماز۔ حسین پوری رات کی مہلت لے رہے ہیں کیونکہ 7 رکعت نماز عدل ہے اور پوری رات نماز پڑھنا احسان ہے۔ عاشور کی صبح حسین کے لشکر کا جو ریگولر مؤذن ہے آج اسے بدل دیا گیا اور کہا اکبر بیٹا آج کے دن اذان تمہیں دینا۔ اکبر خالی حسین کا بیٹا نہیں ہے، اکبر شبیہ رسول خدا بھی ہے۔ لشکر یزید کے سامنے اکبر اذان دے رہا ہے، ان میں سے بہت سو کو یاد آ رہا ہی تو رسول خدا اذان دے رہے ہیں۔ اور عاشور کی سپہر کس کا نام ہے؟ ذوالجناح سے حسین زمین پہ گرے اور گرتے ہی اپنی پیشانی کو جلتی ریتی پہ رکھ دیا، سبحان ربی العالی و بحمد۔ اور عاشور کا دن ختم ہوا، شام غریبہ آئی، پہلا کام شام غریبہ بی بیوں نے کیا کیا؟ کربلا کی مٹی پر تیمم کر کے نماز مغرب اور عشاء پڑھی۔ تو عاشور رات، صبح، سپہر، مغرب، نماز، نماز، نماز اور نماز۔ لیکن اسی عاشور میں ایک وہ نماز پڑھی گئی جس پر حسین نے ہاتھ اٹھا کر عاشور کے دن نماز کو یاد کرنے والے کو خصوصی دعا دی۔ شب عاشور نماز کے حوالے سے دعا نہیں ملی کسی کو، صبح عاشور فجر کی نماز میں کسی کو دعا نہیں ملی، شام غریبہ نماز کے لیے کوئی دعا نہیں ملی، لیکن نماز عاشور کی ظہر اکبر نے نماز کو یاد نہیں کیا۔ میں توہین کی نیت سے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ حسینی لشکر میں عباس و اکبر نہیں، عام سا سپاہی بھی نماز کی اور کربلا کی اہمیت کو جانتا۔ اکبر نے نماز کو یاد نہیں کیا، عباس نے نماز کو یاد نہیں کیا، نعوذ باللہ، یہ توہین نہ ہو کہ ان لوگوں نے نماز پہ توجہ نہیں دی۔ نہیں، جو میرا مقصد ہے وہ سمجھیے، حبیب ابن مظاہر نے بھی نماز کو یاد نہیں کیا۔ حسین کی فوج کا ایک ایسا سپاہی کہ اگر یہ واقعہ تاریخ میں نہ ہوتا تو آج ان کا نام بھی سوائے علماء کے کوئی نہیں جانتا، ابو سمامہ۔ عاشور کی دوپہر ہے، ایگزیکٹ ظہر کا اول وقت، جنگ اپنے پورے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، دونوں لشکر اس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عاشور کی جنگ 1-to-1 نہیں ہوئی ہے، وہ تو جب بنی ہاشم کے نوجوان آئے تو 1-to-1 ہے، اس سے پہلے تو دونوں لشکر لڑ رہے ہیں۔ ابو سمامہ سیداوی इस वाकये के अलावा इनका नाम कहां आता है करबला में, जबकि थे करबला के शहीदों। और हो सकता है कि जो हमारे मोहम्मदी मदरसे के वो बच्चे जो इमाम जमाना की फौज बन रहे हैं उनमें से कोई आगे तस्किरा कर दे अबू समामा, जंग के दौरान आसमान को देख कहा फरजंदे रसूल जोहर का वक्त आ गया, सूरज ढला का जोहर का वक्त आ गया है, हमें जोहर की नमाज पहले पढ़ना है। यह है हुसैन के सिपाही, ऐसी फौज चाहिए हुसैन को, हमें और आपको ऐसा बन के दिखाना है। एक बार हुसैन ने भी आसमान को देखा और हाथ उठा के कहा जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अय अबू समामा तुमने नमाज को कितने अच्छे वक्त में याद किया, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें नमाजियों के गुरु के साथ उठाए। जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें नमाजी बना। अब मैं मसाइब को इख्तिताम को पहुंचा रहा हूं एक ऐसी रिवायत पर जिसके आखिरी जुमले पे बाद मोमिनीन को इतराज होता। मैं इतराज का जवाब पहले दे दूं, रिवायत बाद में पढ़ूंगा। आपका मेरा हम लोगों का रुतबा ज्यादा है कि शोहदाए करबला, हर एक कहेगा शोहदाए करबला तो कायनात के सेलेक्टेड लोग हैं जिनके लिए इमाम कह दे बे अभी व उम्मी मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। हम और आप जब मजलिस में आते हैं और जहां जूतियां उतारते हैं वहां कोई आके बैठता है ना, वहां कोई आके बैठती है ना, बीबी हाथ उठा के दुआ देती है ना आपको, कहां पे आके बैठती है बीबी, जा हम जैसे गुनाहगार अपनी जूतियां उतार रहे हैं मगर हुसैन की वजह से हमें इतना रुतबा मिला। बस ये जहन में रख के ये रिवायत का आखिरी जुमला सुनिएगा, जब हमारा और आपका ये रुतबा है तो शोहदाए करबला का रुतबा तो अपनी जगह। अबू सुमामा ने कहा मौला नमाज का वक्त आ गया, जाअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में करार दे। आए हबीब तुम भी कूफे के रहने वाले, ये लश्कर भी यजीद का कूफे वालों पर मुश्तमिल है, जाके नमाज की इजाजत लेके आओ। मोहलत हबीब गए, कहा कि थोड़ी देर जंग रोक दो, खाली हमें ये नमाज पढ़ना है, नमाज भी कसर पढ़ी जाएगी मुख्तसर। मना कर देते, देखिए कितनी बेहया बेगैरत जलील कौम है। एक मरतबा कहा हबीब तुम लोग नमाज पढ़ के करोगे क्या, तुम्हारी नमाज अल्लाह के कबूल नहीं है। हबीब बर्दाश्त न कर सके, कहा मौला पहले तो उनसे कहा क्या है जालिमो तुम्हारी नमाज कबूल है और रसूल के बेटे की नमाज कबूल नहीं। फिर कहा कि मौला ये जुमला मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हबीब के मसाइब तो कल या परसों आएंगे। मौला अब ये नमाज तो मैं आपके नाना के पीछे जन्नत के किनारे पढ़ूंगा। लेकिन इधर हुसैन कहा कि देखो ये लश्कर मान नहीं रहा है लेकिन नमाज भी हमको पढ़ना और अव्वले वक्त में पढ़ना, नमाज की सफे बनाओ। सफे बनाई गई कूफे वालों को, हुसैन के बाकी साथियों से कोई बेर अदावत दुश्मनी नहीं थी, असल टारगेट हुसैन था, तो हुसैन की जानिब तीर फेंके गए। दो सहाबी आगे बढ़े, कहा फरजंदे रसूल हम तो ये परेशान परेशान करबला में आए थे कि हम बहुत बूढ़े तलवार उठा नहीं सकते, हाथों में राशा है तीरों कमान संभाल नहीं सकते, आपने बुलाया आ तो गए लब्बाई क्या हुसैन, लेकिन हम सोच रहे थे करबला के जिहाद में हम कैसे हिस्सा लें। मौला ये हमें बेहतरीन मौका मिला, आप हमें नमाज के दरमियान अपने आगे खड़े रहने की इजाजत दीजिए, हम तलवार नहीं चला सकते, हम तीर नहीं फेंक सकते, हम नेजे नहीं उठा सकते, हम अपने सीने को ढाल तो बना सकते हैं, मौला आप नमाज पढ़ाइए हम अपने सीने पे ये तीर लेंगे। और उनमें से जो ज्यादा बूढ़ा था सईद इब्ने जुबैर, उसका तो अजीब जज्बा था, दाएं तरफ से तीर आता वो दाएं तरफ झुक के हुसैन को बचाता, बाईं तरफ तीर आता वो बाईं तरफ झुक के हुसैन को बचाता, सामने से तीर आता वो सीने पे तीर लेता, मगर बूढ़ा आदमी तीरों से सारा सीना छलनी हो गया। इधर हुसैन ने नमाज खत्म की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हुसैन ने कहा, और सईद एक मरतबा चकरा के इस तरह गिरा के उसका सर हुसैन की गोद में पहुंच गया। हुसैन नमाज के सलाम की हालत में बैठे हैं, गोद फैली है, सईद का सर हुसैन की गोद में गया, एक बार आंखें खोली, कहा मौला सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, हल वफीता यबना रसूलिल्लाह, ऐ फरजंदे रसूल क्या मैंने हक वफा अदा किया। क्या मैंने वफादारी का तकाजा निभाया, क्या लबैक या हुसैन कहकर मैंने इसे साबित किया। हुसैन की आंखों में आंसू हैं। अभी आप मोहम्मदी मदरसे के बच्चे की तकरीर सुन रहे थे, जॉन के लाशे पे हुसैन इस तरह पहुंचे कि आंखों में आंसू है। सईद का सर हुसैन की गोद में है। सईद एक सवाल कर रहे, मौला सिर्फ इतना बताइए, क्या मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा किया कि नहीं किया। हुसैन की आंखों में आंसू है। कहा, ऐ सईद, अंता अमामी फिल जन्ना, मैं जन्नत में भी जाऊंगा तो तू मेरे आगे आगे चल रहा होगा। पहले तू जन्नत में जाएगा, फिर हुसैन आएगा। तीरों से छलनी सीना, कहा तू मेरे आगे आगे जन्नत में जाएगा। बस एक बार सईद घबरा के कहते, मौला मौला, ऐसा लगा कोई मेरे सर के करीब सरहाने आके बैठा। हुसैन ने कहा, सईद अदब और एहतराम से सलाम करो, ये मेरा नाना रसूल खुदा है जो तुम्हें लेने आया। सईद ने सलाम किया, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहा, मौला ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पर हवा झलने मेरे करीब आया है, मेरे सीने पे हवा झल रहा। हुसैन ने कहा, सईद अदब और एहतराम से इन्हें भी सलाम करो, ये मेरा बाबा अली मुर्तजा है। लब्बैक या हुसैन इस तरह कहिए, फिर देखिए क्या रुतबा मिलता। सईद ने एक मर्तबा तड़प के कहा, मौला और ऐसा लग रहा है कोई मेरे बाजुओं को दबा के मुझे आराम पहुंचा रहा, मेरे बाजू दुख रहे थे, कोई मेरे बाजुओं को दबा के आराम पहुंचा रहा। हुसैन ने कहा, सईद इन्हें भी सलाम करो, ये मेरा भैया हसन मुश्तबा है जो तेरे पास आया। आखिरी जुमला, बस एक बार सईद ने कहा, मौला मैं जख्मों से छलनी हूँ, सर उठा नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा कोई मेरे पैरों के करीब आके बैठा है। हुसैन ने कहा, सईद पैर समेट लो, ये मेरी माँ फातिमा जहरा जो तुझे लेने आई है। मेरे लाल के वफादार फातिमा तेरे पास खुदा अजरुकुम अल्लाह। परवरदिगारा हमें भी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन का ऐसा वफादार बना कि शहजादी कौनैन की दुआएं, शफात और मदद यहाँ और आखिरत में हमें नसीब हो। गिरिया करने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। खुदावंदा खाली हाथ मजलिस में यकीनन हम आए हैं, लेकिन हमारे हाथ खाली न पलटा। तुझे फातिमा जहरा का वास्ता, तुझे हुसैन मजलूम का वास्ता। मजलिस में जो जो हाजतें लेके लोग बैठे हैं, सारी हाजतें पूरी फरमा। हमारे मरहूमिन की मगफिरत फरमा। बीमारों को खास तौर पर एक मुमिना लंदन में बहुत बीमार हॉस्पिटलाइज, शिफाए कामिला अता फरमा। खुदा बंदा हमें और हमारी औलाद को अपना दीन सलामत रखने की तौफीक अता फरमा। दुनिया भर के मजलूम शियान हैदर करार और मजलूम मुसलमान, चाहे वो बर्मा के हों, चाहे वो नाइजीरिया के, चाहे वो सीरिया, चाहे वो यमन, चाहे वो सऊदी अरब जहां के हों, इन तमाम जालिमों की मदद फरमा, इन तमाम मजलूमों की मदद फरमा। जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा और जुल्म के खात्मे के लिए ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। मातम हुसैन।